जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधीन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी लोग प्रेम से गाइए हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय 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 जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जग जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 2 तथा भी याचितो देवे ऋषि राथ वर्णो महान मोदमान उवाचेदम प्रहसन्नीव भारत अपि वृन्दारकायूयम् न जानीथ शरीरिणाम् संस्थायां यस्तु भीद्रोहे दुःसहश्चेतनापः जिजीविषूणां जीवानां आत्मप्रेष्ट इहेप्सित क उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे किं नु तद्दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकम्पिनां भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेयकर्मणां नूनं स्वार्थपरो लोको न वेद परसङ्कटम् यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वर। ठीक है, प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवमांश्च श्रीरूपं सग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद गदाधर श्रीवासाद श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बर दारुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखान अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्व अहम न जाने किरात हूणा गृहपुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवनाख सादय येने च पापा यद पाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च ससतिं स्मृतिं दिदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत किलास्यत समे ऋषिणा ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महतभी यैमा पुरो विभुः निर्मायशेते यदमूष पुरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो रशोडशात्मक सोलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे।
तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति गुरुवारीय इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। यहां पर प्रति गुरुवार को भागवत सत्र चल रहा है। शास्त्र में कहा गया है मन की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत कथा से परे और कोई साधन नहीं है। एतस्माद् परम कश्चित् मन शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतम लभेत। इस संसार में हम देखते हैं प्रायः सब लोग दुखी हैं और दुख का कारण है मन, क्योंकि यह मन में बहुत बहुत कामनाएं उठती हैं और यह कामनाएं पूर्ण न होने के कारण ये मन जीव को बहुत दुखी करता है। ये मन एक ऐसी चीज है जो इस संसार में जीते हुए व्यक्ति को जलाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि इस संसार में किसी व्यक्ति का शत्रु बाहर नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हमारे शत्रु पाकिस्तान वाले हैं, दूसरे देश के हैं, या दूसरे राज्य के हमारे शत्रु हैं, या हमारे पड़ोसी हमारे शत्रु हैं। परंतु भगवान कहते हैं हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा ही न जीता हुआ मन है, क्योंकि यह मन ही व्यक्ति को नरक में लेकर जाता है। यदि हम हमारे मन को वश में नहीं करते हैं, मन को पवित्र नहीं करते हैं, मन शुद्ध नहीं है, तो यह मन इस जीव को नरक में लेकर जाता है। और यदि यह मन को शुद्ध किया जाए तो यही मन जीव को भगवान के धाम में पहुंचा सकता है। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बांधाय विषया संगे निर्मुक्त विषय मन। यह मन ही संसार में जीव के लिए बंधन का कारण है और यही मन संसार के जीव के लिए मुक्ति का कारण है। भगवान की भक्ति कराने वाला यदि कोई तत्व है तो यह मन है, और भगवान की भक्ति से विमुख लेकर जाने वाला तत्व है तो यह मन। यह मन किसी व्यक्ति को या तो स्वर्ग में पहुंचा देता है कभी गोलोक धाम में, तो यही मन किसी व्यक्ति को नरक में डालता है। इसलिए मन की शुद्धता बहुत आवश्यक है, और मन को पवित्र करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत से बड़ा और कोई साधन नहीं। तो प्रति बुधवार को यह भागवत हम श्रवण करते हैं जिससे हमारा मन शुद्ध और पवित्र होता है, और मन शुद्धि करने वाला यह भागवत उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके बहुत बहुत जन्म के पुण्य हो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य जिसके एकत्रित हुए हो, ऐसे व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम लभेत, ऐसे व्यक्ति को ही भागवत प्राप्त हो सकता है। साधारण व्यक्ति इस भागवत को नहीं सुन सकता है। आप देखिए, यहां से कुछ लोग वेस्ट भयंदर वेस्ट से आए हैं, कुछ लोग दूर दूर से आए हैं, परंतु इसी बिल्डिंग वाले यहां पर नहीं आए हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि उनके करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य एकत्रित नहीं हुए। जब बहुत बहुत जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर उस भाग्यवान व्यक्ति को यह भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब उस भाग्यवान व्यक्ति के अंदर आ गए हैं। हम सब भाग्यवान हैं, हमें हमारे भाग्य को समझना चाहिए। कभी कभार लोग भजन में आकर, भक्ति में, सत्संग में आकर भी अपने आप को बहुत हीन तुच्छ मानते हैं। वे समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। परंतु भागवत कहता है, वेद शास्त्र उपनिषद कहता है, वास्तव में वह व्यक्ति भाग्यवान है जो भागवत कथा श्रवण कर रहा है। तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत। हम सब भाग्यवान हैं, और भाग्यवान है इसलिए प्रभुपाद जी की इस इस्कॉन संस्था से हम शुद्ध भागवत का श्रवण कर रहे हैं। भागवत तो कई जगह पर होता है, परंतु शुद्ध भागवत बहुत कम जगह पर होता है। क्योंकि आप देखते हो संसार में कई कई जगह पर भागवत कथा ये होती है, परंतु वह कथा करने के लिए लोग धन लेते हैं। कथा से पहले ही नक्की कर देते हैं कि हम आपके वहां कथा करने के लिए आएंगे, आपको इतना धन हमें देना पड़ेगा। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, परंतु एक कथाकार एक कथा करने के 13 लाख रुपए लेते हैं, और उनकी कथा में हजारों हजारों लोग आते हैं। परंतु अपनी बुद्धि से विचार कीजिए, भागवत कहने वाला धन की आसक्ति से मुक्त नहीं हुआ है तो संसार में लोगों को इतनी बड़ी जीवन की आसक्ति से कैसे मुक्त करा पाएगा? कथाएं होती हैं, परंतु शुद्ध कथा नहीं होती है। प्रभुपाद जी की इस संस्था में पवित्र और शुद्ध कथा होती है। आप कई दिनों से आ रहे हो, यहां पर न तो कथा करने वाले धन ले रहे हैं, न तो कथा कराने वाले। बेचारे फोन कर करके अचिन चक्र प्रभु बुलाते हैं, आइए आइए, पर आकर आपसे कोई काम नहीं करवाना है, या मेहनत या पसीना नहीं गिराना है। बुला रहे हैं क्यों? आकर केवल बैठकर सुनना है, और एक घंटा सुनने के बाद प्रसाद खाकर चले जाना है। लेकिन इतना भी नहीं हो सकता है, दुर्भाग्य है जीव का, क्योंकि उनके जन्म के पुण्य नहीं है। तो हम सब अपने भाग्य को समझे, और भाग्य को समझते हुए इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। बहुत सुंदर कथा है श्रीमद् भागवतम के 6ष्ठ स्कंद में। पिछले कुछ दिनों हम नहीं आ सके, इसलिए आप सबके चरणों में क्षमा याचना। परंतु हमसे भी महान महान भक्त यहाँ पर आकर गए, और आशा है कि उन्होंने बहुत सुंदर प्रकार से यह वर्णन किया होगा, लेकिन प्रभु जी की इच्छा है कि आप थोड़ा रिपीट कर दीजिए। रिपीटेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग की बुद्धि एक बार सुनने से नहीं समझ में आता है। प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्यो कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय। कलयुग में जो लोग है सुमंद है, बुद्धि बिल्कुल मंद है। इसलिए मैंने जहां से जहां तक इसे विराम किया था वहां से ही मैं प्रारंभ कर रहा हूं। हमने प्रारंभ किया था जैसे इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपराध किया। अपराध करने से वे शक्तिहीन हो गए। तब असुरों ने इंद्र का स्वर्ग छीन लिया। इंद्र गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के शरण में जाने के लिए कहा कि उसे गुरु बनाओ। सभी देवतागण विश्वरूप के पास गए। विश्वरूप ने नारायण कवच दिया और यज्ञ किया, क्योंकि विश्वरूप के पिता तो देवता थे परंतु माता असुर कुल से थी। इसलिए विश्वरूप ने वह यज्ञ में देवता और असुर दोनों को यज्ञ की हवि प्रदान की। इससे इंद्र को बहुत क्रोध आया और अपने यह दूसरे गुरु विश्वरूप का सिर काट दिया। सिर काटने से इंद्र को अपराध लगा। वह अपराध चार लोगों ने बांट लिया, आप सब जानते हो। जब बहुत बड़ा अपराध लगा, ये श्रीहीन हो गए, तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। भगवान के पास जाकर प्रार्थना की कि आप हमारे लिए कुछ करो। भगवान तो विश्व भावन इस संसार के का पालन करने वाले हैं। भगवान ने देवताओं पर तरस खाकर देवताओं को एक उपाय बताया कि यदि उस यज्ञ से प्रकट हुए वृत्तासुर का आपको वध करना है। आप सब ये कथा जानते हो, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, उस यज्ञ से वृत्तासुर प्रकट हुए। वृत्तासुर का वध करना चाहते हो तो भगवान ने कहा दधीचि ऋषि के पास जाओ। दधीचि ऋषि के पास जाकर उनकी हड्डी मांगो और दधीचि ऋषि की हड्डी से वह हड्डी लेकर विश्वकर्मा के पास जाना। विश्वकर्मा दधीचि की हड्डी से एक बहुत ही बड़ा अस्त्र बना देंगे जिसका नाम होगा वज्र, और उस वज्र से वृत्तासुर नाम के असुर का वध हो सकता है। तो आप सब जानते हो इंद्र ने कहा कि प्रभु और इस संसार में किसी के भी पास हमें भीख मांगने के लिए भेजिए, परंतु दधीचि ऋषि के पास मत भेजिए, क्योंकि ऑलरेडी इंद्र दधीचि ऋषि का अपराध कर चुके थे। दधीचि का भी सिर काट चुके थे इंद्र। अब जिसका सिर काटा है उसके पास कैसे भिक्षा मांगने के लिए जाए। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम जाओ और अश्विनी कुमारों को आगे रखना, दधीचि ऋषि ना नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु देवताओं को ये उपाय बताए। देवता लोग भगवान विष्णु को प्रणाम किए और जैसे देवता लोगों ने प्रणाम किया, प्रणाम करते करते भगवान देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। एतस्मात् परम कश्चित् इंद्रमेव समाधिश्य भगवान विश्व भावन पश्यताम निमिषेणाम तत्र एवा अंतर दधे हरि। सभी देवताओं के देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवताओं की इच्छा नहीं थी कि भगवान यहां से चले जाए। देवता तो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे भगवान के रूप को, परंतु भगवान स्वच्छंद गति से विचरण करने वाले हैं। भगवान जब चाहे तब किसी व्यक्ति के सामने प्रकट हो सकते हैं और जब चाहे तब भगवान अंतर ध्यान हो सकते हैं। भगवान स्वतंत्र है। तो देवताओं के सामने भगवान अप्रकट हुए और भगवान वहां से चले गए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तथा भिया चितो देवे ऋषिराथर वर्णो महान मोदमान उवाचेदम प्रहसन्नीव भारत। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, हे भारत, ये कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को संबोधन दे रहे हैं भारत। कथा सुनाने वाले सुखदेव गोस्वामी हैं और सुनने वाले परीक्षित महाराज हैं, और 7 दिन लगातार कथा चल रही है। तो कथा सुनाते सुनाते सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का नाम ले रहे हैं। अब देखिए, मैं आधे घंटे से यहां पर आपको सुना रहा हूं, तो सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आपका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशाल प्रभु सुनिए, आप एक एक बात में बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक बार शुरू कर दिया तो कर दिया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, हे भारत, तो शुरू कथा में कई समय से चलती हुई कथा में किसी श्रोता का नाम लिया जाता है तो इसका अर्थ है कि उस श्रोता के ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं कि हे परीक्षित, अब ध्यान से सुनो, और उसे संबोधन कहा जाता है। जब शुरू कथा में किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो उसे संबोधन कहते हैं। तो यहां पर परीक्षित महाराज को संबोधन देते हुए परीक्षित नहीं कर रहे हैं, हे परीक्षित ऐसा नहीं कहे, हे भारत। परीक्षित महाराज का एक नाम है भारत। पता है उनका नाम भारत क्यों है? भा का अर्थ होता है भास्कर। भास्कर का अर्थ जानते हैं? सूर्य। तो भास्कर का भा है, भा का अर्थ है सूर्य, और रथ का अर्थ है लगे रहना। ये इस काम में रथ रहता है, तो रथ का अर्थ क्या है? उसमें लगे रहना। तो रथ का अर्थ है लगे रहना और भा का अर्थ है सूर्य। हमारे वेद और शास्त्र में अज्ञान की तुलना अंधकार के साथ की है, जानते हैं? अज्ञान की तुलना अंधकार के साथ की है और ज्ञान की तुलना प्रकाश के साथ की है। और यह प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से। तो सूर्य को ज्ञान कहा गया है, ज्ञान रूपी सूर्य। तो भा का अर्थ होता है ज्ञान, और रथ का अर्थ तो आप जानते ही हैं। तो जो ज्ञान में रथ रहता है, जो कृष्ण विषयक ज्ञान में रथ रहता है, उसे भारत कहा जाता है। तो परीक्षित महाराज निरंतर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान में रथ रहते थे, भागवत की कथा सुनते रहते थे, इसलिए उसे भारत कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे भारत, हे ज्ञानी, हे आप ज्ञान में नित्य रहने वाले परीक्षित, तथा देवे भियाचितो महान अथर्वो ऋषि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, तथा जिस प्रकार से भगवान ने देवताओं को कहा था कि आप दधीचि ऋषि के पास जाकर ये करना, उसी प्रकार सभी देवतागण अथर्वा के पुत्र दधीचि ऋषि के पास गए, और दधीचि ऋषि के पास जाकर सभी देवताओं ने अभियाचितो, दधीचि ऋषि को याचना की। सभी देवतागण दधीचि ऋषि के पास जाकर प्रणाम किए, और प्रणाम करके एक भिक्षुक की तरह दोनों हाथ जोड़कर याचना किए कि हम आपके शरण में आए हैं और हम आपसे एक चीज चाहते हैं। तो दधीचि ऋषि ने कहा, बताइए क्या चाहते हो? तो सभी देवताओं ने कहा कि हम आपकी हड्डी लेने के लिए आए हैं। बताइए दधीचि ऋषि के मन में क्या विचार आया होगा? आपके घर पर बेल बजाकर कोई आए और आकर कहे कि हमें आपसे कुछ चाहिए, तो आप कहोगे क्या चाहिए? कहे कि हमें आपका यह हड्डी चाहिए, शरीर से हड्डी निकाल कर दे दो, आप दोगे? अरे तुरंत दरवाजा बंद कर देंगे, भागो यहां से। दधीचि ऋषि ने भगाया नहीं, सुना तो अभी याचितो, सभी देवताओं ने बहुत याचना की और दधीचि ऋषि ने कई बार ना भी कहा, परंतु फिर भी देवतागण याचना करते रहे क्योंकि भगवान ने कहा था कि उनके पास जाओ और जरूर देंगे। तो बहुत बहुत याचना की। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मोदमान उवाचेदम प्रहसन नीव भारत। तो जब देवतागण इस प्रकार से दधीचि ऋषि से हड्डी मांग रहे थे तो दधीचि ऋषि मोदमान देवताओं की बात को सुनकर आनंदित हो रहे थे। मोद का अर्थ होता है आनंद। तो दधीचि ऋषि आनंदित हो रहे थे परंतु अपने आनंद को बाहर व्यक्त नहीं कर रहे थे। बाहर तो बिल्कुल सीरियस थे और अंदर से आनंदित हो रहे थे कि आज यह शरीर किसी के काम में आएगा। दधीचि ऋषि मन में यह सोच रहे थे कि वास्तव में भगवान के द्वारा दिया गया यह शरीर आज धन्य हो गया कि कुछ लोग के काम में यह शरीर आएगा। तो मोद मानम वे बहुत प्रसन्न हुए। ठीक उसी प्रकार हमारे पास भी यदि कोई आता है और शरीर तो कोई नहीं मांगेगा, दो तीन रुपए मांगता है तो प्रसन्न होना चाहिए, चलो भागो यहां से, ये नहीं कहना चाहिए। मोद मानम, मोद मानम अंदर से प्रसन्न थे परंतु बाहर से वे प्रसन्न नहीं थे। प्रसन्न क्यों नहीं थे? तो कहते हैं कि दधीचि ऋषि देवताओं से कुछ उपदेश सुनना चाहते थे, शरीर और आत्मा के बारे में उपदेश सुनना चाहते थे, इसलिए दधीचि ऋषि ने बाहर से ना कहा, मैं नहीं दूंगा, और अंदर से चाहते थे कि अभी कुछ देर के बाद मैं दे दूंगा इसे शरीर। तो जब दधीचि ऋषि ने ना कहा कि मैं नहीं दूंगा, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अपि वृंदा रका यूयम न जानीत शरीरिणाम। दधीचि ऋषि ने देवताओं को कहा कि वृंदा रका, हे देवताओं। अब देखिए यहां पर भी एक संबोधन आ रहा है। दधीचि ऋषि ने देवताओं को संबोधन देते हुए कहा कि वृंदा रका, वृंदा रका का अर्थ होता है देवताओं। अब इसका भी अर्थास्वादन हम करेंगे। वृंदा रका का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले वृंद का अर्थ क्या होता है आप सबको पता है, भक्त वृंद, समस्त भक्त वृंद, समूह। वृंद का अर्थ होता है समूह और वृंदा रका का अर्थ होता है जो समूह में रहे। तो देवता लोग जो हैं वे अक्सर समूह में ही रहते हैं, अकेले नहीं भटकते हैं। तो देवता क्योंकि हमेशा समूह में रहते हैं इसलिए देवताओं को वृंदा रका कहा जाता है। तो दधीचि ऋषि देवताओं को वृंदा रका कहते हैं। वास्तव में सभी भक्तों को चाहिए समूह में रहे। समूह में रहना और समूह में रहकर कीर्तन करना यह देवताओं का गुण है। और कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए समूह में रहकर कीर्तन करने से ही भगवान मिलेंगे। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधस। तो सभी भक्तों को समूह में भजन करना चाहिए, समूह में कीर्तन करना चाहिए। यदि समूह में भक्ति नहीं करते हैं तो हमारी भक्ति का कभी ठिकाना नहीं रहेगा। जैसे आप देखते हो कि यदि समूह में आप जप करेंगे, रोज सुबह माला करेंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी, और नींद आएगी तो भी आप सोचेंगे ये बाजू वाला क्या सोचेगा यदि मैं सो जाऊंगा तो कम से कम बाजू वाले के डर से नींद नहीं आएगी। और यदि वही माला आप घर पे बैठकर करते हो तो कभी सोओगे, कभी बोलोगे, कभी खाओगे, कभी पियोगे, कुछ ठिकाना नहीं रहेगा। तो समूह में रहकर भजन करना चाहिए। और समूह में रहकर भजन करने का एक फायदा है कि जब समूह में व्यक्ति रहते हैं तो कुछ लोगों की भक्ति बहुत बड़ी बड़ी चढ़ी होती है, कुछ लोगों की कम होती है, कुछ की ज्यादा किसी की कम। समूह में रहने से जिसकी भक्ति ज्यादा है तो जिसकी भक्ति कम है वो ज्यादा भक्ति वाले के बाजू में बैठे तो उसका प्रभाव उसे मिल सकता है और बिल्कुल लेवल में होकर सब लोग भजन कर सकते हैं। इसलिए समूह में रहकर भजन करना ये देवताओं का गुण है, इसलिए देवताओं को वृंदा रखा कहते हैं। और इसे नेगेटिव में यदि हम ले तो जो लोग समूह में भजन नहीं करते हैं ये किसका गुण है? किसका? असुरों का। जो अकेले अकेले रहना चाहते हैं, अकेले अकेले भजन करना चाहते हैं, ये वास्तव में असुर का गुण है, असुरों का लक्षण है। देखिए एक शब्द में कितना भाव छुपा हुआ है। दधीचि ऋषि देवताओं को संबोधन दे रहे हैं कि हे वृंदारका, हे देवताओं, हे समूह में रहने वाले देवताओं। और वृंदारका का और एक अर्थ होता है, वृंदा का अर्थ होता है समूह और अका का अर्थ होता है रक्षण करना। वृंदम रक्षन्ति इति वृंदारका, जो समूह होकर रक्षण करे इसे वृंदारका कहते हैं। तो देवता लोग जो हैं इस संसार में कई सारे जीव समूह का रक्षण करते हैं, इसीलिए देवताओं को वृंदारका कहा जाता है। तो खैर कैसे भी देवताओं को वृंदारका कहा जाता है इतना हमें समझना है। और दधीचि ऋषि देवताओं को कहते हैं हे वृंदारका, हे देवताओं, युयम अपि, आप लोगों को भी मालूम नहीं है। दधीचि ऋषि कहते हैं आप लोगों को मालूम नहीं है कि इस संसार में रहने वाले जो मनुष्य है, रहने वाले जीव है, उस जीव को मरने के समय कितना कष्ट होता है आप भी नहीं जानते हो। इस संसार में आप लोग मेरी हड्डी लेने के लिए आए हो, परंतु मृत्यु में कितना दुख है, कितना कष्ट है आप नहीं जानते हो। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके कहने से मर जाएगा? मृत्यु में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। और दधीचि ऋषि कहते हैं कि मरने में बहुत कष्ट है, इसलिए मैं मेरी हड्डी नहीं दूंगा। ये सत्य बात है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो है मृत्यु। और कई सारे छोटे मोटे दुख हैं, परंतु सबसे बड़ा दुख मृत्यु है। एक दिन यह शरीर, इतना सुंदर शरीर जो चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, इस शरीर को चिता के ऊपर सुलाया जाएगा, यह शरीर एक दिन राख हो जाएगा, शरीर का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा दुख है। एक भक्त तो कहते हैं आप मेरे सामने मृत्यु का नाम मत लो, क्योंकि जब मृत्यु का नाम आप लोग मेरे सामने लेते हैं तब मैं मौत डर जाता हूं। उन्होंने बहुत सुंदर शेर लिखा, डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। मैं सुनता हूं कि एक दिन मुझे मरना है, यह मृत्यु का नाम सुनते ही मेरी रूह कांप जाती है, आत्मा कांप जाती है, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं डर जाता हूं। मरने का नाम मत लो। भगवान कपिल देव भागवत के तृतीय स्कंद में अपनी माता देवहूति को यह ज्ञान देते हैं कि हे मां, जब किसी व्यक्ति की आत्मा इस शरीर से अलग होती है, जब किसी की मृत्यु आती है, तो मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, 1000 बिच्छू, अब एक बिच्छू डंक मारे तो कितना दर्द होता है, ये जिसको डंक लगा है वही जानता है। ऐसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उतने दर्द का अनुभव ये शरीर छोड़ने के समय होता है, मृत्यु के वक्त होता है। आप कहोगे प्रणाम, प्रमाण है आपके पास? प्रमाण यही है कि जिसकी मृत्यु हुई है, आपने देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बहुत पाप किए हैं, और उनकी मृत्यु जब होती है तो उनके शरीर से पसीना निकल जाता है, टट्टी पेशाब निकल जाता है, मल त्याग हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत दुख होता है, दर्द होता है। तो यह मृत्यु बहुत दुख देने वाला है, बहुत दर्द देने वाला है। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कोई दान मांगने आएगा और हम शरीर दे देंगे? नहीं भाई नहीं, आप चलो यहाँ से जाओ, हम अपना शरीर नहीं देंगे। ये केवल बाहर से कर रहे थे, अंदर से तो देना चाहते थे, बाहर से कर रहे थे ताकि देवता लोग इसे उपदेश करें, ये उपदेश सुनना चाहते थे। भक्तों का स्वभाव होता है कि वे किसी के मुख से उपदेश सुनना चाहते हैं। यद्यपि भक्त जो होते हैं वे उस उपदेश को जानते हैं, लेकिन दाढ़े लागी पूछे जानी साधु स्वभाव, साधु का भक्त का यह लक्षण होता है कि वे उस उपदेश को जानने के बाद भी प्रश्न पूछते रहते हैं ताकि बार बार वह उपदेश सुने। आपने देखा भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से जिज्ञासा की कि मुझे रामचंद्र के बारे में बताओ, मैं राम के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, क्या आप सब कुछ जानते हो लेकिन फिर भी मूर्ख की तरह प्रश्न कर रहे हो। भक्त का स्वभाव होता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मूर्ख बन जाते हैं, और यही भक्त का स्वभाव होना चाहिए। किसी भक्त का मिलाप, किसी भक्त का भेटा किसी वरिष्ठ भक्त के साथ हो तो उसे उससे मिलकर मूर्ख की तरह हमें बन जाना चाहिए, और मूर्ख की तरह दोनों हाथ जोड़कर कहना चाहिए आप हमें उपदेश करो, और यदि उपदेश नहीं करते हैं तो प्रश्न पूछना चाहिए के आमी केने अमाय जारे तापत्रय, जैसे सनातन गोस्वामी पूछे, रूप गोस्वामी पूछे। लेकिन किसी किसी भक्त को तो देखा गया है कि वे देखते नहीं है कि हमें जो भक्त मिले हैं ये हमसे बड़े हैं, बड़े भक्त को भी उपदेश देने लगते हैं कि ये इसका ये है, ये वो है, वो है। नहीं, ये शास्त्र का कथन है, यदि हमसे बड़े व्यक्ति हमसे मिलते हैं तो उसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए, और उस उपदेश को ग्रहण करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मंजूर है। यहाँ पर दधीचि ऋषि को उपदेश सुनने के लिए अब देवताओं को कहना पड़ा कि मैं आपको शरीर नहीं दूंगा, क्योंकि शरीर देने में बहुत कष्ट है। तो कहा कि आप नहीं जानते हो कि मृत्यु के समय कितना दुख होता है, दुह दुसह चेतना पह, मृत्यु कितना दुखमय है आप नहीं जानते हो। और आगे कहते हैं दधीचि ऋषि, जिजि विष्णुनाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ट येप्सित क उत्सहेत तम दातु भिक्षमाणाय विष्णवे। वे कहते हैं कि यहां जीव जगत में इच्छा वालों, जीने की इच्छा वालों के लिए इस संसार में अपने शरीर से ज्यादा क्या प्रिय है। इस संसार में जो जीने की इच्छा रखते हैं उसे सबसे ज्यादा अपने अपने शरीर से प्रीति होती है, अपने शरीर से प्रेम करते हैं। यह देखा गया है कि जो जीने की इच्छा रखते हैं वे अपनी पत्नी और अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम अपने शरीर से करते हैं, और कहते हैं ऐसा व्यक्ति यदि भगवान भी आ जाए, यह शरीर देने वाले भगवान है, मान लो देवताओं ने कहा कि आप अपना शरीर देना नहीं चाहते हो, अरे ये हम नहीं कह रहे हैं, हमें भगवान विष्णु ने भेजा है, और यह शरीर आखिर तो भगवान विष्णु का ही है। तब दधीचि ऋषि ने कहा कि यदि यह शरीर देने वाले भगवान विष्णु भी आकर किसी जीव के पास आकर कहे कि आप अपना शरीर दे दो, फिर भी यह जीव शरीर देने के लिए तैयार नहीं होगा, यद्यपि वो भगवान का ही है। अरे शरीर देने की बात छोड़ो, वो भगवान शरीर नहीं मांग रहे हैं, भगवान के कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, अपना मन मुझ में लगाओ, मुझे प्रणाम करो। ये शरीर देने की बात दूर रही, भगवान के सामने इस शरीर को झुकाते भी नहीं है, शरीर क्या देंगे। दधीचि ऋषि का कहने का भाव यह है, ये शरीर भगवान के द्वारा मिला है और भगवान मांग रहे हैं, शरीर नहीं मांग रहे हैं, भगवान कहते मुझे प्रणाम करो, फिर भी लोग प्रणाम नहीं करते हैं, संसार के लोग प्रणाम नहीं करते हैं, तो मैं मेरा शरीर दे दूंगा। बहुत सुंदर तर्क है, भगवान के द्वारा यह शरीर दिया गया है, वास्तव में यह भगवान की संपत्ति है, और इसे भगवान की संपत्ति समझकर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ होता है, ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिया, और ईश का अर्थ होता है स्वामी। सभी इस संसार में जितनी भी इंद्रिया है, इस संसार में जितने भी शरीर हैं, ये सभी शरीर के स्वामी है भगवान कृष्ण। तो ऋषि केण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमारी इस इंद्रियों को, हमारे इस शरीर को, जो इंद्रियों के स्वामी है, जो इस शरीर के स्वामी है, उसकी सेवा में लगाए, उनको प्रणाम करे, उनका भजन करे, उनका नाम ले। हरे कृष्णा हरे। उनका नाम लेना चाहिए, परंतु संसार में कुछ दुर्भाग्यशाली लोग ऐसे हैं, भगवान के द्वारा दिए गए इस देह से भगवान का नाम नहीं लेते और अपने आप को बहुत सभ्य मानते हैं। हम देखते हैं ट्रेन में, हम जब जाते हैं तो किसी का फोन आता है, किसी का नंबर लिखने के लिए किसी से पेन मांगते हैं कि अपनी पेन दीजिए, और पेन से किसी का नाम या नंबर लिखकर वो पेन वापस लौटाते हैं, लेकिन वापस लौटाते वक्त क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? थैंक यू। एक पेन केवल दो शब्द लिखने के लिए पेन उधार लिया और वापस देते वक्त थैंक यू कहते हैं। इतना सुंदर शरीर देने वाले, एक पेन देने वाले को यदि थैंक यू कहने की आवश्यकता है, तो इतना सुंदर शरीर देने वाले को थैंक यू कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, दो आंख दी, दो कान दिया, आपको लंगड़ा भी नहीं बनाया, लूला भी नहीं बनाया, गूंगा भी नहीं बनाया, इतना सुंदर शरीर देने वाले को थैंक यू नहीं कहना चाहिए? एक साधारण सी शिक्षा है, किसी से पेन लेते तो थैंक यू बोलते हैं, तो इतना सुंदर शरीर देने वाले को थैंक यू नहीं कहना, कहना चाहिए। परंतु भगवान के लिए थैंक यू क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान, यह शरीर भगवान का है और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। परंतु दधीची ऋषि तर्क दे रहे हैं कि वे भगवान भी आकर यह शरीर मांगे फिर भी कोई व्यक्ति नहीं देगा। जब इस प्रकार से दधीची ऋषि ने कहा कि मैं अपना शरीर नहीं दूंगा, तो देवा उचू, देवताओं ने कहा, परंतु देवा के आगे श्री लिखा है, आप देखेंगे श्री देवा उचू, कुछ लोग श्री देवी ऊंचू समझेंगे, श्री देवी नहीं श्री देवा है। तो श्री का अर्थ होता है सुंदरता, देवता लोग दिखने में बहुत सुंदर है, श्री का अर्थ होता है ज्ञान, देवता लोग बहुत ज्ञानी है। इसलिए अब देखिए किस प्रकार से दधीची ऋषि को पटा रहे हैं, किस प्रकार से दधीची को अपनी बातों में ले रहे हैं, ये सीखना चाहिए। किसी से हमारे मंदिर के लिए, किसी से डोनेशन लेने के लिए जाना हो, लाइफ मेंबर बनाना हो, तो ये देवताओं से सीखना चाहिए किस प्रकार से किसी से मांगा जा सकता है। यद्यपि ये इंद्र इसी दधीची का सिर काट दिए थे, इतना बड़ा अपराध किए थे, लेकिन फिर भी देखिए किस प्रकार से अपनी बातों में इसे ले लेंगे। देवता कह रहे हैं, किमनु तद दुस्त्यजम ब्रह्मन पुंसाम भूतानु कंपिनाम भवद विधानाम महताम पुण्य श्लोके ये कर्मणाम। कहते हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे दधीची ऋषि, हे ब्राह्मण, आप तो जन्म से ब्राह्मण हो, आप तो बहुत पवित्र हो, आप तो बहुत शुद्ध, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अब जिसके पास से कुछ लेना हो तो पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, सीखिए। कहते हे ब्राह्मण, पुंसाम भूतानु कंपिताम, प्राणियों और जीवों पर दया रखने वाले यशस्वी, अब देखिए कितनी प्रशंसा कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे दधीची ऋषि, आप तो सभी जीवों के ऊपर दया रखने वाले हैं। पुण्य श्लोके ये कर्मणाम, आप तो बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े लोगों से आप प्रशंसनीय हो, बड़े बड़े लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े लोग आपकी स्तुति करते हैं, अरे बड़े बड़े लोग की बात छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान आपका नाम लेते हैं, आप इतने महान हो, महताम, आप बहुत ही महापुरुष हो। नूनम स्वार्थ परो लोके न वेद पर संकटम। क्या आप हमारे दुख को नहीं जानते हो? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही सुंदर इस बात को कहते हैं कि देवताओं ने कहा कि आप हमारे संकट को, आप हमारे दुख को नहीं जानते हो। यदि आप आपका शरीर हमें नहीं दोगे, अपनी हड्डी नहीं दोगे, तो ये सभी देवता, सभी जीव उस वृत्तासुर के हाथों से मारे जाएंगे। तो हे दधीचि ऋषि, आप हमारे दुख को नहीं जानते हो। तो दधीचि ने सामने से कहा, आप कह रहे हो आप मेरे दुख को नहीं जानते हो। दधीचि ऋषि ने कहा, आप मेरे दुख को नहीं जानते हो। आप अपने दुख को गा रहे हो, आप मेरे दुख को तो देखो। ये शरीर छोड़ने में कितना दुख है, इतना क्लेश है। देवतागण कहते हैं, यदीश्वर, आप तो यह शरीर देने में समर्थ हो, कृपया करके आप अपना शरीर दे दो। देवताओं ने बहुत बहुत प्रशंसा की कि आप हमारे, कम से कम आप अकेले, यदि आप अपना शरीर दोगे तो केवल आप एक दुखी होंगे, परंतु अपना शरीर देने से इस संसार के लोगों को आप बचा सकते हो। इस संसार को बचाने में एक व्यक्ति को यदि मारा जाए तो यह करना चाहिए। इस प्रकार से देवताओं ने दधीचि ऋषि को समझाया। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि इस कथा से भिक्षा लेने वाले को भी उपदेश मिल रहा है और भिक्षा देने वाले को भी उपदेश मिल रहा है। सबसे पहले किसी व्यक्ति को किसी से दान मांगना है तो उसे जानना चाहिए कि मैं जिसे दान मांग रहा हूं वो व्यक्ति कैसा है। अब दान मांगने से उस व्यक्ति को ही दुखी करना है तो उसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से दान नहीं मांगना चाहिए। कभी कभी देखा गया है कुछ लोग ऐसे व्यक्ति से दान मांगते जिसके पास कुछ है ही नहीं। तो सामर्थ्यता देखनी चाहिए कि यह व्यक्ति समर्थ है कि नहीं लाइफ मेंबर बनने के लिए या दान देने के लिए। और दान देने वाले को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति मेरे पास भिक्षा लेने के लिए आया है उसके लिए कैसे भी करके मुझे दान देना चाहिए। यदि इस प्रकार से दान देने वाला और दान देने वाला आपस में समझेंगे तो इस संसार में दोनों लोग सुखी रहेंगे। तो यहां पर समस्त देवतागण दधीचि ऋषि से उनका शरीर मांगने के लिए आए हैं। दधीचि ऋषि ने कहा कि मैं कैसे यह शरीर दूंगा। देवताओं ने बहुत बहुत समझाया कि आप दे दीजिए, यह शरीर से सभी लोगों का भला होगा। देवताओं के ऐसे समझाने पर दधीचि ऋषि कहते हैं, श्री ऋषि उवाच, क्या कहते हैं, धर्मम व श्रोतु कामेन युयम मे प्रत्युदारिता एष व प्रियमात्मानम त्यजन त्यजत त्यजंतम संत्य जाम्यहम। दधीचि ऋषि ने कहा कि हे देवतागण, आप डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा यह जीवन तो आप सबको समर्पित है, मैं तो कुछ क्षण के लिए मजाक कर रहा था। धर्म व श्रोत कामेन, मैं आपके मुख से, हे देवतागण, मैं आपके मुख से धर्म का उपदेश श्रोतु सुनना चाहता था, इसलिए मैं यह कह रहा था, एव एव एष व प्रियमात्मानम त्यजन्तम संजयात्मनम। मैं आपके लिए निश्चित रूप से यह शरीर में आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि एक व्यक्ति का यह सौभाग्य है कि किसी व्यक्ति के लिए अपना शरीर, अपना धन, अपना कुछ भी इस्तेमाल हो रहा। तो इस प्रकार से दधीचि ऋषि देवताओं को आगे उपदेश दे रहे हैं कि एक दानी व्यक्ति का कितना सौभाग्य है। जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए लगा रहा है उनका जीवन कितना पवित्र है, उनको कितना लाभ प्राप्त होता है, यह हम अगले गुरुवार को श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सब लोग इस प्रकार से आइए, भागवत सुनकर अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बड़ी कथा है, संक्षिप्त में सुन लीजिए। एक बार इंद्र, बहुत पहले की बात है, इंद्र दधीचि ऋषि के पास गए। पास जाकर कहे कि मुझे ब्रह्म विद्या सिखाइए। जब इंद्र दधीचि के पास गए तो दधीचि ऋषि ने इंद्र के स्वागत करते ही कह दिया कि आपको जो चाहिए वो मांग लो। तो इंद्र ने कहा कि मुझे ब्रह्म विद्या दो। तो दधीचि ने कहा, मन में सोचा कि ब्रह्म विद्या इंद्र को कैसे दूं, क्योंकि इंद्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के योग्य नहीं थे, बहुत ऐश्वर्य में थे, उसके लिए वैराग्य चाहिए। अब इंद्र तो अप्सराओं के साथ नाच गान में स्वर्ग में। तो दधीचि को बहुत बड़ा धर्म संकट हुआ कि यदि इंद्र को मैंने ब्रह्म विद्या दे दिया तो गलत पात्र को विद्या देकर अपराध होगा, और यदि इंद्र को विद्या नहीं देता हूं तो मैं मेरा जो वर दिया हूं इंद्र को यह समाप्त हो जाएगा। तो दधीचि ऋषि ने इंद्र को ब्रह्म विद्या दी, परंतु उस ब्रह्म विद्या में इंद्र को बहुत बहुत धिक्कारा। इंद्र को टारगेट लेकर ब्रह्म विद्या कहा कि यदि कोई भगवान का भजन नहीं करता है तो वह पशु के समान है, भोगों में पड़ा रहता है। तो इंद्र को बहुत जाड़ा। इंद्र ने जब यह सुना तो दधीचि ऋषि व्यासपीठ के ऊपर बैठे थे, इंद्र सुन रहे थे, लेकिन अपने गुरु के मुख से, वक्ता के मुख से यह उपदेश सुनकर इंद्र ने तलवार निकाल लिया और उस वक्ता का ही सिर काटने गए। लेकिन इंद्र ने सोचा कि यदि वक्ता का सिर काटता हूं तो आगे चलकर भविष्य में कोई प्रवचन करने नहीं बैठेगा। तो इंद्र ने अपना तलवार खड़ग में रख लिया, परंतु कहा दधीचि ऋषि को कि आज के बाद यह ब्रह्म विद्या किसी को देना मत, नहीं तो मेरी पोल खुल जाएगी, और यदि किसी को यह ब्रह्म विद्या दिया तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। दधीचि ऋषि ने कहा ठीक है। इंद्र वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद अश्विनी कुमार, स्वर्ग के जो देवता है, अश्विनी कुमार आए और दधीचि से कहे कि हमें ब्रह्म विद्या दीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा नहीं भाई, अपना सिर कटवाना नहीं चाहता हूं, कि यदि मैंने आपको विद्या दिया तो इंद्र मेरा सिर काट लेगा। अश्विनी कुमार ने कहा डरो मत, हम काटना और जोड़ना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अश्विनी कुमार स्वर्ग के हार्डवेद है, ये किसी भी शरीर को काट सकते हैं और जोड़ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इन्होंने कहा आप डरो मत, आप हमें ब्रह्म विद्या दोगे तो इंद्र आपका सिर काटेगा। हमारे पास बहुत बड़ा प्लान है, हम आपके सिर को पहले से ही काट देते हैं और एक घोड़े का सिर लगा देते हैं, और आप उस घोड़े के मुख से हमें ब्रह्म विद्या दो। इंद्र आएगा और आपका सिर काट देगा तो वह घोड़े का सिर कट जाएगा, आपका सिर हम फिर से वहां पर लगा देंगे। तो ऐसा ही हुआ, घोड़े के मुख से दधीचि ऋषि ने ब्रह्म विद्या अश्विनी कुमारों को दी। इंद्र ने सुना कि ये ब्रह्म विद्या दे रहे हैं, आए और आकर दधीचि का सिर काट दिया। तो ऐसी घटना हो गई थी, लेकिन फिर भी इंद्र देखिए दोनों हाथ जोड़कर मांग रहा है अपना शरीर दीजिए, लेकिन फिर भी दधीचि ऋषि देंगे। ये महान, वास्तव में दधीचि ऋषि जैसे महान भक्त, जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए लगाता है उसकी प्रशंसा भगवान करते हैं, वे भगवान को प्रिय होता है। भगवान रामचंद्र अपने मुख से कहे हैं शिपि दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा सहु धर्म हित कोटि कलेशा। ये लोग करोड़ों करोड़ों क्लेश, करोड़ों करोड़ों दुख सहकर भी अपना जीवन दूसरों के लिए दे दिए। आगे हम सब श्रवण करेंगे।